चलो
नमस्कार
शुरू करो।
श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश। प्रत्येक साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश की सेवा, सेना में सेवा दे रहे जवानों और जो देश की सर्वोच्च सेवा में देश के लिए शहीद हुए उनकी विधवा पत्नियों, उनके परिजनों, भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने व उनके कल्याण के लिए इस योजना पर व्यय किया जाता है। आज हमारे साथ पूर्व वायु सैनिक एसके सिंगोतिया सर जुड़े हैं, जो कि इंडियन वेटनर्स ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष हैं। सर, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका। जय हिंद सर।
जय जय हिंद श्रीमान, जय हिंद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आज आपने मुझे मोबाइल वाणी पर आमंत्रित किया। मैं आपका आभारी हूँ और साथ में समस्त अपने जिले वासियों को, जिले वासी, प्रदेश वासी और समस्त देश की जनता को जय हिंद बोलता हूँ।
जी सर।
जी
सर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सर क्या संदेश देना चाहेंगे?
सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की जो तीनों सेनाओं के तीनों अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है कि जिसमें आम जनता के लिए सेनाओं के तीनों अंग की ओर से केंद्रीय सैनिक बोर्ड को की तरफ से आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस करके टोकन भेजे जाते हैं। तो जो छोटे ध्वज होते हैं चौकोर साइज के रेक्टेंगल, वो उनको टोकन ध्वज बोलते हैं, और कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए एक स्फेरिकल शेप वृत्ताकार में होते हैं, उनको कार फ्लैग बोलते हैं। तो
जी
ये जारी किए जाते हैं, इनकी बहुत न्यूनतम शुल्क रखी जाती है वॉलेंटियर बेसिस पे, कि भाई जो जिसकी जो इच्छा हो, फौज के प्रति अपना एक समर्पण भाव और कृतज्ञता भाव के लिए कुछ दान राशि देते हैं। तो उसमें क्या है कि इस झंडे में तीन रंग होते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे में। सबसे ऊपर गाढ़ा लाल रंग होता है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा रंग होता है गहरा नीला, जो कि इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा होता है हल्का आसमानी कलर का, हल्का नीला या आसमानी कलर का, वो वायुसेना को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन एयरफोर्स को। तो इस प्रकार से ये तीनों अंगों का समावेश होता है तीनों कलर का आर्म फोर्सेस फ्लैग डे में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि बताए हैं कि फौज के प्रति अपना एक कृतज्ञता व्यक्त करना और एक दान राशि वॉलंटियर रूप से देना, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय सेना के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सेना के लिए सिविल यानी नागरिकों के द्वारा मन से अपने स्वेच्छा दान राशि करना है, जिसकी जरूरत सीमाओं पर शहीद होने वाले वीर जवानों, उनके परिवार जनों के कल्याण हेतु, या यूं कहें कि बम ब्लास्ट इत्यादि में घायल हुए या दिव्यांग हुए सैनिकों के इलाज के लिए या उनको कृत्रिम अंग के लिए, इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। इसका प्रक्रिया ये है कि झंडे केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली से तैयार किए जाते हैं और प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में एक राज्य सैनिक बोर्ड है, जिसका कहीं कहीं नाम राज्य सैनिक बोर्ड एवं सैनिक पुनर्वास कल्याण केंद्र, ये राज्य लेवल पे कहीं इस प्रकार से भी नाम है। तो और फिर इसके बाद इसकी छोटी इकाई राज्य के नीचे हर एक जिला में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी झंडा दिवस के वितरण के लिए मतलब जिम्मेदार होते हैं। कलेक्टर साहब की परमिशन के बाद वो हर शासकीय डिपार्टमेंट को भी झंडा भेजे जाते हैं आर्म फोर्सेस के, और न्यूनतम शुल्क पे जो है स्वेच्छा दान के रूप में भी राशि का निर्धारण कर देते हैं कि आप लगभग इतनी राशि भेजने करके। तो ये जो है हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि सिविल के लोगों का शासकीय विभागों से काम तो पड़ता ही है, तो उस प्रकार से जो भी काम करने जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई ये आर्म फोर्सेस का है, तो 5 रुपए, 10 रुपए जिसकी जो शिक्षा दान देते हैं वो उनका इकट्ठा करके जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को भेजा जाता है। बाद में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय इकट्ठे राशि करके जो होती है उसको हर क्वार्टरली या हर मंथली जैसा भी राशि बड़ी होती है उसको भेजते हैं राज्य सैनिक बोर्ड को, और राज्य सैनिक बोर्ड अल्टीमेटली भेजता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड को। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के तरफ से प्रशस्ति पत्र उन दानदाताओं को दी जाती है जिन्होंने 1 लाख या 1 लाख से अधिक रुपए का दान सशस्त्र सेना झंडा दिवस में देते हैं। बहुत से जबलपुर से काफी इसमें दानदाता हैं क्योंकि वहाँ कुछ टेक्निकल चीजें भी है और कुछ फैक्ट्रीज भी है जबलपुर में, तो वहाँ के लोग हैं 10-11 लोग जो कि हर साल 1-1 लाख रुपए दान देते हैं और अधिक भी देते हैं। तो उनको 80G इनकम आयकर की धारा 80G के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलती है उतनी राशि का।
जी सर। सर मेरा अगला सवाल इसी को लेकर है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर स्कूलों में या महाविद्यालयों में विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन सर क्या देश का एक नागरिक इस योजना से इस तरीके से सहभागी हो सकता है?
ये जो योजना है इसमें 7 दिसंबर के दिन पे बहुत से लोग जो रिटायर्ड जवान हैं वो स्वयं कुछ जागरूक हमारे नागरिक लोग प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति जिसमें टीचर और डॉक्टर्स का भी समावेश है। यहाँ मैं एक डॉक्टर जो पुराने सिविल सर्जन थे डॉक्टर तिवारी सर जो कलेक्ट्रेट के एकदम सामने रहते थे उनका उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले साल मतलब 1 लाख से अधिक की राशि दान की थी अपने पैसे से रिटायर होने के बावजूद भी उन्होंने जज्बा सैनिकों के लिए तो 1 लाख के करीब दान की थी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ही नहीं स्टूडेंट भी स्कूल में ले जाके अपने HM साहब और प्रिंसिपल साहब इन सबको अपना पैसे जमा कराते हैं और वो इंटर्न डिस्ट्रिक्ट सैनिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के द्वारा वो राशि यहाँ जमा हो जाती है, छात्रों के द्वारा दी गई है, छात्रों के पालक के द्वारा जमा कराई गई राशि। और जहाँ तक नागरिकों का सवाल है तो बहुत से नागरिक और बहुत से रिटायर्ड अपने सैनिक वो स्वयं जाके सैनिक कल्याण ऑफिस में भी अपनी राशि जमा कराकर रसीद ले सकते हैं। ये बिल्कुल एक फेयर गेम है, जो भी आप पैसे देते हैं तुरंत आपको उसकी उतनी राशि की रसीद दे दी जाती है और मंथ एंड पे ये राशि जो है राज्य सैनिक बोर्ड को पहुंचा दी जाती है इकट्ठी होगी आज।
सर इसी को लेकर अगला सवाल है कि देश के युवा इस सशस्त्र झंडा दिवस पर कैसे सहभागी हो और इस हेतु क्या प्रयास करे कि एक आम इंसान भी इसको उपलब्ध करने के लिए किस तरीके से उनको झंडा उपलब्ध हो सके?
जी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अब तो जागरूकता काफी बढ़ गई है, अन्यथा राजस्थान अपना हरियाणा पंजाब इनके सैनिकों की संख्या हर घर पीछे कम से कम एक व्यक्ति तो है ही फौज में आर्मी नेवी एयरफोर्स में चाहे BSF में, तो ये लोग मतलब सिविल नौकरी ना करके फौज की नौकरी करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि आर्म्ड फोर्सेस का उतना प्रचार प्रसार नहीं था पहले, लेकिन अब हाँ जागरूकता आई है, NCC के बहुत सारे ऑफिसेस खुले हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में बटालियन। तो इस प्रकार से हमारे पढ़ने वाले बच्चे लोग भी होनहार बच्चे भी या जुझारू बच्चे वो सब NCC ले रहे हैं, फौज के प्रति अपना अभिरुचि दिखा रहे हैं और मैं उन सबके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ कि वो लोग भी आते हैं हमारे सैनिक कल्याण ऑफिस में पूछने के लिए कि सर इसमें अधिकारी वर्ग कैसे बन सकते हैं। फौज का लोगों को जनरली बस जवान का पता होता है, तो बहुत सारे जागरूक लोग हैं वो आते हैं। अब जब जैसे वो हमारे सैनिक कल्याण ऑफिस आते हैं तो उनको मोटिवेट किया जाता है फौज के प्रति और बताया जाता है कि फौज एक डिसिप्लिन फौज है जिसमें सिर्फ शुरू के ही शुरुआती 2-4 साल की जो ट्रेनिंग होती है अफसर की ट्रेनिंग 3-4 साल के बीच की होती है, वो थोड़ा एक ट्रेनिंग पीरियड टफ होता है जवानों के लिए, 1-2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है उनके ब्रांचेस के हिसाब से, तो वो बहुत टफ होता है। तो इनकी बाकी आगे की गारंटी बहुत अच्छी होती है, उज्ज्वल भविष्य होता है और अपना टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो भर्ती का